ब्रेक में भाई बहने गए हुए हैं, लेकिन आज हम सभी के सामने भगवान का वो अमूल्य हीरा उपस्थित है जिसके लिए कहते हैं मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। और लगभग गए 50 साल से जो इस वाणी के द्वारा लाखों को जिन्होंने जीवन दिया है, ऐसा मधुबन उसका अनमोल हीरा हम सभी के सामने उपस्थित है, तो इनका स्वागत जोर से तालियां बजाकर होना चाहिए। भगवान का वो लाडला बच्चा हमारी सारी दादियां दीदियां ब्रह्मा बाबा मम्मा इन सब का ये लाडला नूरे रतन। और इस रतन की विशेषता, इनको कहते हैं हरिद्वार। वैसे कहते हैं हरिद्वार में एक बार दर्शन तो करना चाहिए। बाबा ने आपको वरदान दिया, बच्ची आप हरि की वो पौड़ी हो, आपको कहाँ जाना नहीं पड़ेगा, सभी आपके पास आएंगे और आपके वहां से भगवान का दर्शन करेंगे। ये वो हरिद्वार है ना, हम सब ब्राह्मणों का। आदरणीय शिलू दीदी जी, माना दैवी संस्कारों की मूरत, शालीनता की मूरत, मधुरता, हर्षित मुक्ता और हाँ सबसे महत्वपूर्ण दिल की अंदर और बाहर से सच्चाई, हर एक को से और सहयोग देने की भावना, और सबसे बड़ी बात कहूं बहुत बड़ी दिल और क्षमा दिल। कोई कुछ भी करे बड़ी दिल से माफ करते हैं एक माँ की तरह। और आदरणीय दीदी जी को मालूम है एक सिद्धि प्राप्त है, वाचा सिद्धि, इसलिए स्वयं भगवान ने उन्हें कहा, बाप दादा ने कहा, बच्ची आपकी जीवा पर तो साक्षात सरस्वती देवी विराजमान है। जो स्वयं वरदानी मूरत महादानी मूरत है, 65 साल से जो बाबा के इस ज्ञान में है और इस मधुबन ब्राह्मण परिवार की शान है, ऐसे हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारी मीठी प्यारी शिलू दीदी जी का वापिस एक बार जोर से स्वागत। और आज दीदी जी की विशेष टॉपिक है, जो बाबा ने मुरली चलाई थी उस टॉपिक के अनुसार, अचानक एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास कैसे करें। इस पर आदरणीय दीदी जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, दीदी जी कृपया आप हम सब भाई बहनों को मार्गदर्शन करें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी ने प्यारे बाबा की मुरली आज सुनी ना, सभी ने सुनी, ऐसे कोई है जो जिन्होंने नहीं सुनी, सब ने सुनी। तो हम सभी कहाँ बैठे हैं आज की मुरली अनुसार, कहाँ बैठे हैं जी, कहाँ बैठे हैं बोलो, जोर से बोलो। हम सभी राजस्व अश्व वेद अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। ये यज्ञ है, भगवान ने आकर के ये यज्ञ रचा है। यज्ञ क्यों रचा जाता है? जब कोई आफत आती है तो ये आफत आनी है जरूर, सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। इस यज्ञ में बाबा कहते हैं विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी और सारी दुनिया इसमें स्वाहा होगी। तो सारी दुनिया स्वाहा होने से पहले इस यज्ञ को चलाने के लिए ब्रह्मा चाहिए, फिर ब्राह्मण चाहिए, फिर स्वाहा 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 करने वाले चाहिए, जब तिल घी सब चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मण बच्चों को इस यज्ञ द्वारा रचते हैं, दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ये हमको हमारे जन्मदिन की गिफ्ट बाबा हमें देते हैं, दिव्य बुद्धि और तीसरा नेत्र, जिससे हम तीनों कालों को, तीनों लोकों को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा हम बच्चों से अब क्या चाहते हैं? हर मुरली में बाबा अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। बाबा बच्चों से क्या चाहते हैं? कि बच्चे बलिहार जाए, तन मन धन से इस यज्ञ को और आगे बढ़ाए। लेकिन फिर बाबा ने साथ में ये भी कह दिया कि इस यज्ञ में जो बलिहार जाते हैं उनके लिए क्राइटेरिया क्या है? कि पवित्रता बहुत जरूरी है, तभी उनका सब कुछ सफल होता है। क्योंकि ऐसे तो धन देने वाले बहुत हैं, ऐसे तो यहाँ पर मजदूर भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो तन भी लगाते हैं, नौकरी है उनकी, तनख्वाह लेते हैं। लेकिन तन मन धन स्वाहा करने वाले ऐसे ब्राह्मण बच्चे बाबा कहते हैं वो यज्ञ को चलाते हैं। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे को छोड़ना नहीं है, अपने परिवार में रहना है, अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है। सब यहाँ आके थोड़ी बैठेंगे, अब सब यहाँ के बैठे तो क्या करेंगे? पहले तो रहने का स्थान चाहिए, फिर अगर आएंगे भी तो करेंगे क्या? इसीलिए अपने अपने घर में रहना है। लेकिन मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है और बाबा की श्रीमत पर मुझे चलना है, ये अंदर में निश्चय करके हम ये ब्राह्मण जीवन अपना बना रहे हैं, निभा रहे हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना भी कुछ नहीं है, और साथ साथ बाबा कहते नया जोड़ना भी कुछ नहीं है, जो है उसको निभाना है। क्योंकि जो कुछ है ये सब हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, तो वो हिसाब किताब हम छोड़ के जाएंगे भी कहाँ? वो हिसाब किताब हमारे पीछे आएगा, इसीलिए छोड़ना नहीं है। लेकिन चुकतू भी करना है, हिसाब किताब पूरा भी करना है, छोड़ना भी नहीं है पर नया भी नहीं जोड़ना है। ये तीनों काम साथ साथ करने हैं, कुछ छोड़ना भी नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, और जो पुराना हिसाब किताब है उसको चुकतू भी करना है। ये तीन कार्य साथ साथ बाबा कहते करना है। तो कैसे हम करेंगे? उसके लिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि कमल फूल समान जीवन, न्यारा और प्यारा जीवन, कहीं भी आसक्ति न हो, कहीं भी आकर्षण न हो। हमारी दादी जानकी जी कहती थी, बहुत प्यार से कहती थी, अटकना मटकना चटकना भटकना, ये सब इतने कितने शब्द है, कहीं भी अटकना नहीं है, भटकना भी नहीं है, कहीं किसको चटकना भी नहीं है, और फिर हाँ मटकना भी नहीं है। मटकना समझते हैं, मटकना किसको कहते हैं, हाँ नखरे करना, बहाने बनाना, ऐसे वैसे से देह अभिमान में आ करके बहुत कुछ एक्शन करते हैं, मटकते हैं, वो भी नहीं करना है। लेकिन कैसे रहना है, न्यारा और प्यारा, क्योंकि नया हिसाब किताब बनाना नहीं है, तो न्यारा रहकर प्यारा बनना है, प्यारे बनकर न्यारा नहीं रहना है। दोनों में अंतर है, एक होता है न्यारा बनकर प्यारा बनना, दूसरा होता है प्यारा बनकर न्यारा रहना। किसको हम ऊंचा गिनेंगे, न्यारा बनकर प्यारा रहना, क्योंकि जब न्यारा रहकर प्यारा बनते हैं तो वो प्यार दिल का होता है, सच्चा प्यार होता है। और जब प्यारा बनकर न्यारा रहने की कोशिश करते हैं, वो मोह का प्यार है, वो मोह है, क्योंकि प्यार है ना, मोह है, वो प्यार नहीं है, मोह है। और फिर सोचते नहीं नहीं मुझे तो न्यारा रहना है, पर अंदर में है मोह। और दूसरा है न्यारा रहकर प्यारा माना, ये सब आत्माएं हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, और बाबा के बच्चे होने के नाते सब बाबा के बहुत प्यारे हैं। लेकिन सबसे प्यार का आधार क्या है, क्योंकि बाबा से प्यार है, तो एक एक को प्यार करने की जरूरत नहीं है। जैसे पेड़ को पानी देने के लिए एक एक पत्ते को पानी नहीं देना होता है, पेड़ को कैसे पानी मिलता है, पत्तों को कैसे मिलता है, बीज से अपने आप मिलता है। बीज को दो तो अपने आप पत्तों को मिल जाएगा, बस एक बीज को पानी देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं, बाबा से प्यार है तो हमारी दृष्टि एकदम बेहद में चली जाती है, क्योंकि बाबा का ही परिवार है, सारा विश्व वसुधैव कुटुंबकम है, तो वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार भगवान का परिवार है, ये जब हम समझते हैं तो फिर सबसे प्यार है। किसी ने कहा मुझे सबसे प्यार है सिवाय एक मेरे पड़ोसी के, पड़ोसी से प्यार नहीं। अब पड़ोसी से भी तो प्यार होना चाहिए ना, आखिर काम कौन आएगा मुसीबत में, वो रिश्तेदार काम आएंगे क्या, वो तो दूर दूर बैठे हैं, बच्चे भी काम नहीं आएंगे, कौन काम आएंगे, पड़ोसी काम आएंगे। तो इसीलिए पड़ोसियों से तो विशेष प्यार चाहिए। शिव बाबा ने उस दिन भी कहा, जब एड्रेस करते हैं, भाषण करते हैं, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्यारे भाइयों और बहनों, तो किसी व्यक्ति ने ऐसे एड्रेस किया, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, अब उसकी पत्नी बैठी हुई थी सभा में बैठी हुई थी, तो जब भाषण पूरा हुआ तो वो पत्नी तो बहुत नाराज हो गई उससे, आपने ऐसे क्यों कह दिया भाइयों और बहनों, मैं आपकी बहन थोड़ी हूँ, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। तो फिर उसने उसके बाद करेक्ट कर दिया, पत्नी सामने रहती, प्यारे भाइयों और बहनों सिवाय एक के सिवाय एक के, क्योंकि वो बहन तो नहीं है ना, पत्नी है सिवाय एक के। लेकिन हमारे लिए क्या है, गुजराती में तो मैं देखा, गुजरात में पत्नी को भी बहन ही नाम देते ना, कहते ना बहन, नाम ही ऐसा है। तो इसीलिए वैसे भी बाबा के बच्चे हैं तो सब भाई बहन है, और लोग तो इसलिए डरते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बना देती है। हम कहते हैं भाई बहन को हम छड़ी घुमा करके, लो बन जाओ भाई बहन, ऐसे थोड़ी करते हैं, लेकिन ज्ञान देते हैं कि आत्मा के नाते तो सब भाई भाई है, और ब्रह्मा पिता की संतान है, इसीलिए शरीर में है तो भाई बहन है। फिर उनको समझाते हैं, आप भी ब्रह्मा की संतान हो तो आप भी हमारे भाई या बहन हो, इसलिए उस हिसाब से सब एक परिवार है। तो भगवान ने इतना ऊंचा हमें ये परिवार दिया है इस संगम युग पर, और बाबा कहते हैं ये सारा दैवी परिवार फिर सतयुगी परिवार बन जाएगा। सतयुगी परिवार होगा ना, सतयुग में क्या होगा, राजा रानी महाराजा महारानी तो एक होंगे, बाकी उनकी फैमिली होगी ना, राज घराना होगा, राज परिवार होगा, तो राज परिवार तो बहुत बड़ा होगा। तो इसी प्रकार बाबा कहते चलो महाराजा महारानी तो एक बनेंगे, लेकिन राज परिवार तो बहुत बड़ा बनेगा, 108 में तो थोड़े आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा लड़ियां लगा देंगे, राज परिवार तो बहुत बड़ा होगा ही ना, सब रॉयल फैमिली तो होगी ना, तो चलो उसमें भी आ जाए तो भी आओ सौभाग्य, क्योंकि बहुत पद है। बाबा ने कल क्या कहा, चंडाल भी है जो शमशान घाट संभालते हैं वो भी है, तो कौन शमशान घाट संभालेंगे, वो समर्पित तो हो गए लेकिन पुरुषार्थ कुछ भी नहीं किया तो क्या पद पाएंगे। उसे तो रॉयल प्रजा बनना अच्छा है, परिवार में रहो और इतना पुरुषार्थ करो जो कम से कम रॉयल प्रजा में आ जाए। यहाँ तक बाबा ने कहा कई बार अभी भी दुनिया में देखो कई प्रजा माना जो उन जो सिटीजन्स है वो जो राजा है उनसे भी ज़्यादा धनवान है ना। बाबा मिसाल देते हैं बिरला टाटा, अभी है कहेंगे अडानी और अंबानी, हाँ उनसे भी लेते हैं, उनको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं वो संभाले, बाकी गवर्नमेंट को शेयर मिल जाता है, तो क्योंकि गवर्नमेंट इतना नहीं कर पाती है तो इसीलिए फिर प्राइवेटाइजेशन करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को शेयर तो देते हैं, टैक्सेस तो खूब भरते हैं। तो इसीलिए ये सब इस कलयुग में है, सतयुग में तो कोई ऐसी बात नहीं होगी, सब धनी होंगे, लेकिन उसका सारा पुरुषार्थ यहाँ है, सारा पुरुषार्थ। पर अभी बाबा कहते हैं पुरुषार्थ नहीं किया तो देखो बाबा क्या क्या सुनाते, अंत में क्या होगा, खून के आंसू बहाएंगे, पश्चाताप के आंसू बहाएंगे, मैंने नाहक अपना समय बर्बाद किया। होता है ना, मुझे याद है हम लोग जब कॉलेज में थे तो उस समय, तो आजकल तो सब सहज हो गया, मोबाइल में सब कुछ रिजल्ट आ जाती है, तो उस समय कोई मोबाइल वोबाइल भी नहीं थे, अखबारों में भी नहीं आता था, लेकिन कॉलेज जाना पड़ता था अपनी रिजल्ट देखने के लिए, है ना, जो पुराने हैं तो अपनी रिजल्ट है वो पूरा वो शीट वो लग जाता था, कौन पास विथ ऑनर हुआ, कौन फर्स्ट क्लास में आया, कौन सेकंड क्लास में आया, कौन फेल हुआ, वो सारी लिस्ट आ जाती थी। अब सबको अपने जो उनके दोस्त थे उनके नंबर तो मालूम थे, अब मालूम होते थे तो अपने दोस्तों का नंबर देखते थे, कहाँ आया मेरा दोस्त वो कहाँ पर है, वो किस कैटेगरी में है, तो हर एक को हर एक का पता चल जाता था। तो अंत में भी क्या होगा, क्या होगा, सबको सबका पता चल जाएगा, क्या क्या पद कौन कौन पाने वाला है। तो इसीलिए बाबा कहते जो फेल होने वाले होंगे वो तो रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, और बाबा कहते अंत में तीन प्रकार की लाइन लगेगी, एक लाइन कौन सी होगी, जो विजयी होंगे उनकी लाइन लगेगी, दूसरी लाइन किनकी होगी, जो पश्चाताप करने वाले होंगे उनकी लाइन लगेगी, और तीसरी लाइन कौन सी लगेगी, जो उलहना देने वाले होंगे कि आपने हमें बताया क्यों नहीं, वो भी तो होंगे ना, क्योंकि सबको तो कहाँ बाबा का परिचय मिलेगा, तो जिनको परिचय नहीं मिलेगा वो तो अंत में उलहना देंगे, हमको बताया क्यों नहीं, तो उसमें दोषी कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे दोषी? हम हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते सबको संदेश देना है। ये क्यों देना जरूरी है? क्योंकि बाबा कहते ये तीन शब्द बाबा कहते अचानक, एवर रेडी और बहुत समय का अभ्यास। इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा डेट नहीं बताते हैं और बताना भी नहीं चाहिए। बताए बाबा डेट क्या समझते हो? बताए बताए जो समझते बताना चाहिए वो हाथ उठाए। नहीं जो समझते नहीं बताना चाहिए वो हाथ उठाए। वो तो उठाएंगे, सब उठाएंगे। तो क्यों जरूरी है नहीं बताना? क्योंकि कभी भी हो सकता है। सब कुछ तैयार है बाबा कहते हैं। प्रकृति भी बाबा से पूछ रही है बाबा हम अपना काम कब शुरू करें। माया भी पूछ रही है हम कब पूरा रूप से विदाई लें। फिर एडवांस पार्टी भी पूछ रही है कि हम भी अपना काम शुरू कब करें। उनको तो नई रचना रचती है ना एडवांस पार्टी की आत्माओं को। तो हर एक को अपनी अपनी ड्यूटी है। अब वो अपनी ड्यूटी कब शुरू करे उसके लिए बाबा कहते हैं तुम तैयार हो जाओ तो वो अपनी ड्यूटी शुरू करे। पर्दा तो तब खुलेगा जब अंदर जो एक्टर्स हैं वो तैयार बैठे हो। अब एक्टर्स ही तैयार नहीं है और पर्दा खोल दिया। अभी एक्टर्स अपनी जगह ले रहे हैं, अभी तक पूरे सेट नहीं हुए हैं और पर्दा खोल दो तो क्या होगा? क्या होगा? सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, डर जाएंगे, अरे ये क्या पर्दा खोल दिया। तो इसीलिए पर्दा खोलने लिए प्रकृति तैयार है। सब तैयार बैठे हैं, प्रकृति खोलेगी ना पर्दा। तैयार है वो, बस उनको तो खाली रस्सी खींचनी है और क्या, पर्दा अपने आप हट जाएगा। परंतु क्यों नहीं खोल रही है प्रकृति? क्योंकि उसमें जो एक्टर्स हैं मंच वाले वो तैयार नहीं है। तो दोष किसका? दोष किसका? हमारा है ना, यही कहेंगे ना। उलहना जो देंगे उनके लिए भी दोष किसका? क्यों उलहना दिया? वो भी हमारा, ऐसे ही कहेंगे ना कि हमने उनको कहा, उनको दिया क्यों नहीं। हाँ मुझे याद है कई बार हम तो पहले तो सेंटर पर ही रहते थे। बॉम्बे में भी रहे सेंटर, हैदराबाद रहे, बैंगलोर रहे, विदेशों में भी रहे। तो हम कोर्स करा लेते थे लेकिन पवित्रता की बात नहीं सुनाते थे। और फिर जब वो मुरली सुनने लगते थे तो कई तो पूछते थे खुद ही, आपने हमको कोर्स में पवित्रता की बात क्यों नहीं की? बाबा के मुरली में तो आता है। पर हम उनको नहीं बताते थे, हम यही सोचते थे कि बताएंगे कहीं वो भाग न जाए वो बाबा को छोड़ न दे, क्योंकि पवित्रता से तो डरेंगे, तो नहीं बताते थे। और 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना हो जाता था तब मुरली से उनको पता चलता था। तो कई ऐसे भी थे जो कहते थे पहले क्यों नहीं बताया? तो दोष किसका? पहले क्यों नहीं बताया? तो कोर्स करने वाले उन्होंने नहीं बताया तो दोष उनका ही हो गया। वो कहते थे हम इतने समय से, हमें पता ही नहीं था कि पवित्र रहना है। अभी 1 महीना हो गया, मैं रोज क्लास में आता हूँ आती हूँ, अभी पता चला, पहले बताना चाहिए था। खैर वो भी ड्रामा कहेंगे, लेकिन बाबा हम बच्चों को सावधान तो कर ही रहे। जैसे कल भी बाबा ने कहा किसी को अपनी अंतिम घड़ी का पता है? पता है, जब आए आत्मा जन्म लेती है तो रिटर्न जर्नी की भी तो टिकट लेके ही आती है ना। क्योंकि जिसने शरीर धारण किया उसको एक दिन शरीर तो छोड़ना ही है, चाहे वो 80 साल जिए, 100 साल जिए, कितने साल भी जिए, लेकिन एक दिन तो उनको शरीर छोड़ना ही है। तो रिटर्न जर्नी की टिकट वो जरूर अपने साथ ले आया है, लेकिन वो डेट पता नहीं है। इसीलिए कई मम्मा से पूछते थे मम्मा हम तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें। तो मम्मा कहती थी हर घड़ी सोचो कि ये मेरी अंतिम घड़ी है, हर घड़ी सोचो मैं ये मेरी ये अंतिम घड़ी है। तो अंतिम घड़ी माना कितना पुरुषार्थ करेंगे। कोई स्टूडेंट होता है कि अभी एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, परीक्षा का पेपर देना है, तो लास्ट मिनट तक पढ़ते रहते है ना, होता है ना। लेकिन जिसने बहुत काल से अपना स्टडी पूरा किया है उसको तो निश्चिंत होगा, वो निश्चिंत होगा, उसको होगा कि जो भी पेपर आए जो भी क्वेश्चन आए वो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिसने नहीं किया होगा वो अंत तक उस समय लास्ट मिनट भी पढ़ूं, पर लास्ट मिनट सोचेगा तो कई बार तो नर्वस हो जाते हैं, नर्वस कईयों को तो डायरिया हो जाता है कईयों को तो बुखार हो जाता है। परंतु जिन्होंने बहुत काल का अभ्यास किया है उनको तो कोई डर नहीं है। और अंतर क्या होगा, वो पेपर जो होता है ये पेपर जो होगा अंत का, बहुत अंतर है। क्या अंतर है, वो तो कितना बड़ा क्वेश्चन पेपर होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं। पर ये पेपर का जो क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है वो एक ही है। कौन सा है वो क्वेश्चन, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप स्मृति लब्धा। अंत के समय किसी की भी याद न आए सिवाय एक बाबा के, अंत में केवल मैं और मेरा बाबा, अशरीरी अवस्था, देह से एकदम न्यारी आत्मा तैयार है, आत्मा तैयार है। जैसे बाबा कहते हैं मक्खन निकालते हैं तो जैसे वो तैयार हो जाता है ऊपर, हलवा तैयार हो जाता है तो सब वो सहारे छोड़ देता है, हलवा तैयार हो गया तो घी भी छोड़ देता है, जो एक्स्ट्रा घी है जो भी कहीं चिटका हुआ है सब छोड़ देता है, वो तैयार हो गया। तो आत्मा तैयार हो जाती है और एक सेकंड में आत्मा उड़ जाती है, कोई आकर्षण नहीं। लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल का अभ्यास होगा तभी हम एवर रेडी बन सकेंगे। हम सदा तैयार है कभी भी एग्जामिनेशन हो जाए। और बहुत काल का अभ्यास होगा तो अचानक का सामना सहज कर सकेंगे क्योंकि पहले से ही तैयार है। तो क्वेश्चन पेपर एक ही होगा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का। लेकिन वो कब होगा पेपर, कहाँ होगा, किस रूप में होगा, कैसे होगा, वो पता नहीं। कौन से, वो दुनिया में तो क्वेश्चन पेपर कब होगा उसकी तारीख भी पता है, वो कहाँ होगा वो भी पता है, कितने घंटे का पेपर है वो भी पता है, तो तारीख तिथि तारीख सब पता है। लेकिन क्वेश्चन क्या होगा वो पता नहीं है, होता है ना इसे, इसलिए बहुत पढ़ना पड़ता है क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा। और यहाँ क्वेश्चन का पता है लेकिन कब कहाँ कैसे किस रूप में वो पता नहीं है। अब ज्यादा मुश्किल क्या है, एक ही क्वेश्चन वो भी पता है लेकिन कब कहाँ कैसे वो पता नहीं। और दूसरा है कि कब कहाँ कैसे सब पता है लेकिन क्वेश्चन पेपर पता नहीं, कौन सा सहज है, क्या कहेंगे, हाँ? और बताओ कौन सा सहज है, पेपर क्वेश्चन पता हो और बाकी कुछ पता नहीं हो वो सहज है, या बाकी सब पता हो क्वेश्चन कौन सा है वो पता नहीं, सहज कौन सा है, हाँ? अब क्वेश्चन पता है तो कभी भी हो तो तैयार है ना। तो वो तैयारी तो फिर बहुत काल की चाहिए ना, क्योंकि पता है क्वेश्चन कौन सा होना है। लेकिन वो प्रैक्टिकल पेपर है, खाली थियोरिटिकल पेपर नहीं है, प्रैक्टिकल पेपर है। मैं उसका कई बार मिसाल देती हूँ कि कैसे हमें अशरीरी रहना है। मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। कलम को बहन जी ने बताया ना, आज बताया कैसे कितने घंटे वो गाड़ी खराब हो गई, तो अच्छा हुआ कि एक धर्मशाला थी जैनियों की, वह उन्होंने थोड़ा पना दिया। तो ये भी आप लोग लकी हो हाँ, जो आपको जी हाँ, तो इसीलिए लकी हो फिर भी जो आपको स्थान मिल गया, बाबा ने दिलाया, बिल्कुल बिल्कुल दिलाया। तो मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ, क्योंकि इसमें आप लोग घबराए तो नहीं ना, डरे नहीं ना। जो घबराए थोड़ा डर गए वो हाथ उठाए, थोड़ा 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 हाँ, एंजॉय किया। अच्छा एंजॉय किया, अच्छा अच्छा मुरली क्लास भी किया, नाश्ता भी किया, सब लेकर आए थे। अच्छा वहाँ पास में सेंटर भी था, अरे फिर क्या। पिकनिक हो गई, और रात की पिकनिक। नहीं तो कोई रात की पिकनिक थोड़ी करते हैं कभी भी, रात को तो सो जाते हैं। 3 बजे से 9 बजे तक की पिकनिक थी। वाह वाह, स्नान पानी भी किया, सब कुछ किया, सब सब इंतजाम इतना था। बहुत बड़ा आश्रम था, किस स्थान पर था? अच्छा चिल्लोड़ा से आगे, अच्छा अहमदाबाद के ही नजदीक था। ओके 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 ओके। तो मैं अपना भी एक अनुभव सुनाती हूँ कि कैसे हमारा भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। हम उसमें 5 जने थे 6 जने, उस समय एम्बेसडर कार होती थी। आजकल तो एम्बेसडर कार नहीं है, तो एम्बेसडर कार में 3 आगे और 3 पीछे, 6 जने बैठ सकते थे। तो हम पीछे बैठे थे, लेफ्ट साइड पर बैठे थे। मेरे साथ एक बहन थी जो पतली दुबली थी, वो बीच में बैठी थी, और तीसरे और राइट साइड में एक मोटी बहन थी, हाँ वो बैठी थी। हम 3 पीछे बैठे थे और आगे भी 3 थे, ड्राइवर था और एक बहन थी और एक भाई थे। तो हम सभी पालनपुर गए हुए थे, क्योंकि पालनपुर में कोई ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो फिर एक ही गाड़ी जाती है। तो कोई को दांत का काम होता है, कोई को आँख का काम होता है, कोई को कान का काम होता है, कुछ भी होता है। तो यहाँ तो हॉस्पिटल था नहीं, अपना ग्लोबल हॉस्पिटल तो 91 में तैयार हुआ, ये तो उसके पहले की बात है। तो क्या हुआ, हम लोग सब अपना काम वाम पूरा करके वापस आ रहे थे। तो वापस आ रहे थे शाम के लगभग 6 बजे थे, अभी अंधेरा नहीं हुआ था, अभी थोड़ा उजाला था, शाम के 5-6 बजे होंगे, सवेरे निकले थे। तो वापस आ रहे थे और यही पालनपुर के पास, तो पालनपुर के पास अचानक एक वो भील होते ना ये, तो वो लकड़ी काट करके वो भील आ रहा था, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। तो वो दोनों आ रहे थे और हमारी गाड़ी आराम से जा रही थी, बाबा के गीत गाते हुए जा रहे थे, परंतु वो कहाँ से आ गया पता ही नहीं चला। और उसके सिर पर वो लकड़ी जो काटती थी तो जंगल में, वो सिर पर था उस भील के, और पत्नी भी उसके साथ ही थी। तो वो ऐसे और एकदम से अचानक आ गया, तो हमारे ड्राइवर ने तो देखा, अचानक था ना, आगे पहले तो कुछ भी नहीं था, और अचानक देखा। तो हमारे ड्राइवर ने उसी समय ब्रेक लगाई, इतनी जोर से ब्रेक लगाई, तो ब्रेक क्या लगाई, एक्सीलेटर टूट गया। और उसने सोचा मैं टर्न करूं, क्योंकि टर्न करूं को तो वो बच जाएगा, वो व्यक्ति जो एकदम सामने आ गया। अब टर्न तो कर रहा था, लेकिन वो जो व्यक्ति था उसके पैर को लग गया। तो पैर को लग गया तो उसी समय जो उसके सिर पर लकड़ी का बंडल था वो उछल करके हमारी गाड़ी पर गिरा। तो हमारे गाड़ी पर गिरा और आगे का जो स्क्रीन होता है ना गाड़ी का, वो चूर 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 हो गया। जो जो स्क्रीन होती है ना गाड़ी की, वो ऐसे टुकड़े टुकड़े नहीं गिरते, वो चूर चूर हो के जैसे पाउडर, तो छोटा छोटा वो गिरता है, तो लगता नहीं है किसी को, अगर गिरा भी तो टूटा भी, तो वो ऐसे चूर चूर हुआ। और हम पीछे बैठे थे और उसने जो गाड़ी घुमाई, अब गाड़ी तो घुमाई लेकिन ये थोड़ी देखा कि आगे क्या है, तो वो खाई भी थी वहाँ, तो गाड़ी खाई में जा सकती थी क्योंकि थोड़ी चढ़ाई पर थे, तो खाई में जा सकती थी या तो खंभे को लग सकती थी क्योंकि अंधा टर्न किया ना बिगड़ देखे, क्योंकि उसको बचाना था, तो खाई में जा सकती थी या खंभे को लग सकती थी। तो उसी समय मुझे याद है कैसे मैंने कहा, बाबा हम आपके पास आ रहे हैं, पता नहीं अब कहाँ खाई में जाके गिरेगी या क्या होगा। तो एकदम ऐसी अशरीरी हो गई जो बात मत पूछो, बाबा हम आपके पास आ रहे हैं, बिल्कुल दिल की धड़कन एकदम बंद हो गई, सब कुछ बिल्कुल जैसे लगा कि कुछ अलग ही अनुभव हुआ। लेकिन ड्रामा ऐसा बना कैसे बाबा ने बचा लिया, तो न खाई में गिरी न खंभे को लगी, वहाँ पर वो झाड़ियाँ थी, वो गाड़ी जा कर के झाड़ियों के आगे सो गई हाँ वो क्योंकि व्हील भी निकल गया, जो उसका जो व्हील था एक वो भी निकल गया और वो झाड़ियों में जैसे ऐसे सो गई। अब हम लोगों की दशा कैसी थी, मैं तो इस तरह बैठी थी, तो वो जो पतली थी वो तो गाड़ी के अंदर ही चली गई सीट के नीचे ही चली गई, और जो मोटी थी वो मेरे ऊपर आके गिरी वो मेरे ऊपर आकर के गिरी, तो ऐसे जोर से लगा, और मैं तो उस समय बिल्कुल अशरीरी अवस्था में बैठी थी। खैर तो सब बच गए, किसी को कुछ ऐसा खास कुछ हुआ नहीं तो बच गए। लेकिन वो व्यक्ति जो था उसको लगा पैर में चोट आई और उसको वो गिरा, उसका सिर फूटा फूटा होगा, एकदम बेहोश हो गया, तो उसके टांग टूटी भी होगी। तो जो दो बहनें पीछे थी वो डॉक्टर थी, वो भी अपने कुछ काम से जा रही थी, तो उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को लेकर के रिक्शा करके वो पालनपुर के हॉस्पिटल में ले गई। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, गाड़ी तो खराब हो गई, फिर गाड़ी मंगाई हम लोगों ने और फिर हम वापस आए। पुलिस केस तो कुछ किया नहीं उस समय, लेकिन पुलिस तो आ गई थी, फिर मुखाज बुलाया। खैर हम जब वापस आए, अगले दिन बाबा का प्रोग्राम था, तो हम सभी बाबा के आगे बैठे, अव्यक्त बाप दादा के आगे। तो बाबा ने विचित्र बात कही, बाबा ने कहा आप सबका हिसाब किताब उस आत्मा को जाके लगा। अब क्या मतलब था बाबा का पता नहीं, आप सबका हिसाब उस आत्मा के को जाके लगा। और फिर अगले दिन क्योंकि उसका माना कोमा में चला गया था तो उसकी डेथ हो गई। अच्छा हुआ उस समय नहीं मरा, अगर उस समय उसकी डेथ होती तो और बड़ा केस हो जाता, लेकिन केस तो हुआ। और मैं कहती हूँ कि मैं भी एक विटनेस थी ना उसमें, तो मुझे भी कोर्ट में जाना पड़ा कोर्ट में जाना पड़ा और बताना पड़ा बयान, क्योंकि एक पत्थर आ गया था और वो इतना बड़ा पत्थर तो उसके आगे से वो निकले और हम गाबाड़ी गाड़ी उसी तरफ जा रही थी, तो पता ही नहीं चला। खैर बच गए बाबा ने, और कई कितने समय तक वो केस चला। फिर वंडर ये था, वो तो भील लोग थे, अब पति तो गुजर गया, पत्नी ने जाके दूसरी शादी की, वो तो शादियां तो वहाँ करते हैं, और वो कभी कोर्ट में आई भी नहीं, अब कभी नहीं आई। आखिर कितना एक दो साल चला और फिर वो केस खत्म हो गया। लेकिन कहने का भाव है कि देखो ये अनुभव किया, एक्सीडेंट होता और कैसे आत्मा अशरीरी होती, पर बाबा ने जैसे गोद में ले लिया। परंतु उसके लिए भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए, ऐसे ही नहीं हुआ, ऐसे ही थोड़ी हुआ होगा, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो ये बहुत काल का अभ्यास बहुत जरूरी है, तभी तो हम अचानक का अचानक में पास होंगे। और जो बाबा ने आज का विघ्न विनाशक बनना है, तो विघ्न विनाशक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि विघ्न आएंगे नहीं, विघ्न तो आएंगे क्योंकि हिसाब किताब तो यही चुकतू करना है, लेकिन ज्ञान के लाइट और माइट से, आज बाबा ने जो वरदान में कहा लाइट और माइट, तो लाइट और माइट हम किसको कहते हैं? मुझे याद है हम लोग बहुत साल पहले ये टॉपिक लेते थे, ज्ञान ज्ञान की कोई भी टॉपिक ले लो, चक्र का ज्ञान, अब उससे लाइट क्या मिली और माइट क्या मिली, आत्मा के ज्ञान से लाइट क्या मिली और माइट क्या मिली। लाइट माना रोशनी, माइट माना शक्ति, तो रोशनी क्या मिली आत्मा के ज्ञान से? रोशनी क्या मिली कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, ये मुझे प्रकाश मिला, मैं कभी मरती नहीं हूँ, इतना ज्ञान हमें मिला, ये ज्ञान का प्रकाश मिला। और माइट क्या मिली, शक्ति क्या मिली इसे? शक्ति मिली निर्भयता, कि मैं आत्मा तो कभी मरती नहीं हूँ, मैं आत्मा कभी नहीं मरती हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं कभी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। तो हम लोग भी क्या कहते हैं जब किसी डेड बॉडी के सामने होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? ये आत्मा ने अपना बहुत पुण्य कमाया, अब यही पुण्य वो जहाँ भी आत्मा जाएगी उसका बहुत अच्छा जन्म होगा। बाबा के बच्चों का तो अच्छा ही जन्म होता है, तो क्योंकि उसने बहुत पुण्य कमाया है तो इसलिए दुखी नहीं होते हैं। दुनिया में दुखी होते हैं, क्यों दुखी होते हैं? वास्तव में कारण क्या होता? अपना स्वार्थ, स्वार्थ होता है ना, अब ये चला गया तो मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा का मतलब क्या है? स्वार्थ, वो कहाँ चला गया कैसे गया उसकी परवाह नहीं, वो तो गया वो तो गया, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा मैं, तो उस समय भी मेरा आ जाता है तब दुख होता है। और दूसरा वो जो मोह सताता है वो दुख कर, वो दुख देता है। तो हम तो यही कहते हैं भाई किस में मोह था, शरीर में मोह था या आत्मा में मोह था? तो कोई कहे शरीर में मोह था, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा मेरा, तो शरीर में मोह था। अच्छा रख दो शरीर को, रख सकते हैं, वो तो प्रकृति की चीज है, प्रकृति की चीज को तो प्रकृति में वापस जाना ही है, रख भी दोगे तो सड़ जाएगा। अच्छा आत्मा से मोह है तो वो आत्मा तो कहीं से भी वापस भी आ सकती है आपके पास, कई बार होता है बहुत मोह होता है ना, वो आत्मा वापस आती है, कई बार वो भटकती भी है, क्योंकि किसी से मोह है वो मोह के कारण वो छूट नहीं पाती है। कोई हिसाब किताब इतना कड़ा होता है, वो वापस आती है आत्मा, और कई बार तो वापस भी आती है तो कोई दूसरे रूप में आएगी, है ना, कईयों का बताते ना पास्ट जन्म का, वो बताते हैं किसी को किस कैसे, किसी का पिता उसका ही बेटा बन के आया, किसका पिता आज शरीर छोड़ा और उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी, तो वही उसका पिता बेटा बन के आया, माना वो दादा था और ये पोता बन के आया। तो अब कई बार कहते हैं, तो अब किसी के प्रैक्टिकल था अनुभव, में कहाँ गई थी तो बता रहे थे कि बहन जी ये अपने दादा की आत्मा वापस आई है, तो मैंने कहा आपको क्या प्रूफ है कि ये दादा की आत्मा वापस आई है? तो कहा कि बिल्कुल जैसे दादाजी हमारा करते थे ना वैसे ये करता है। मैंने कहा क्या करता है बच्चा? वो मेरी दादी जो दादी है ना, माना उनकी पूर्व जन्म की पत्नी, उसको ऐसे डांटता है जैसे पहले डांटता था, वो बच्चा वो हमारी माँ को ऐसे डांटता है क्योंकि जैसे मेरा पिता डांटता था। तो मैंने कहा अच्छा वही संस्कार है उसमें और क्या है, तो कहा कि मेरे पिता को दमा था और इस बच्चे को जन्म से ही दमा है। मैंने कहा अच्छा, फिर तीसरा क्या था कि मेरे पिता को एक दाग था पीछे शरीर पर, इस बच्चे को भी वही दाग वहीं पर दाग है जो मेरे पिता को था। तो ये तीन बातों से उसने कहा वो आत्मा वापस आई है। तो मैंने कहा ठीक है हो सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन क्या आपकी माँ इनको पति मानेगी क्या? हाँ, अपने पोते को पति मानेगी क्या? मानेगी कि मेरा पति है ये? और क्या वो बच्चा अपने दादी को पत्नी मानेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो देखो ये है बात, अब आत्मा ने तो चोला बदल दिया, संबंध बदल गया, हिसाब किताब बदल गया। तो इसीलिए क्या करना होता है, आत्मन को एकदम शांत रखना होता है। वो आत्मा जहां भी गई सुखी रहे, हर एक का पाठ अपना अपना है। तो न्यारा भी बनना है और प्यारा भी बनना है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर हम रोएंगे तो उस आत्मा को ही दुख होगा। हम यही बताते हैं ना, आपका उनसे प्यार था और आप उनको दुख हो, ये तो चाहते नहीं हो। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि उनको दुख मिले तो आप दुखी होंगे तो उनको तो दुख मिलेगा, क्योंकि आपके ही संकल्प उसको पहुंचेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि उसको सुख मिले तो आपको भी मन में शांत रखना होगा, मन को, तब उसको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। अगर आप उसके शुभ चिंतक हैं तो आप भी उसी स्थिति में रहेंगे। ये कितनी बड़ी सोच है, नहीं तो देखो मनुष्य मोह वश क्या क्या सोचते हैं। तो इसीलिए बाबा ने हमें क्या सिखाया, कभी भी रोना नहीं है। हमारी बहनों को हम देखते हैं रोती नहीं है, इतनी बहादुर होती है। तो कई बार कहते हैं भाई फिर भी थोड़े नरम हो जाते हैं, हमारी बहनें शक्तियाँ हैं, है ना शक्तियाँ? हाँ बहनें शक्तियाँ ज़्यादा है या भाई पांडव बहादुर है, कौन ज़्यादा बहादुर है? दोनों ही। बाबा ने कहा सब सीताएं हैं आज सब सीताएं हैं, सब सीताएं और एक राम है जो शोक वाटिका में बैठे हुए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अचानक होगा तो हर वक्त तैयार, जिसको कहते हैं एवर रेडी। एवर रेडी की भी स्थिति बहुत ऊंची है। जी बाबा, हमारी मम्मा थी बिल्कुल जी बाबा। मम्मा इतनी आज्ञाकारी थी जो कभी नहीं सोचती थी ये कैसे होगा, बाबा ने कहा माना जी बाबा। हमारी मोहिनी बहन है ना जो दादी जी के साथ रहती थी, तो वो अपना बहुत सुंदर अनुभव सुनाती थी कि कैसे मम्मा बिल्कुल जी बाबा कहती थी और जरा भी उसको संकल्प नहीं आता था। तो एक मिसाल उसने बताया था कि कैसे एक पार्टी बाबा के सामने बैठी थी और तो बच्चे ने कहा कि बाबा मुझे जो आज भोग बना ना, हलवा बना था, वो हमको बहुत अच्छा लगा हलवा। तो बाबा ने कहा अच्छा हलवा अच्छा लगा, अभी भूल मंगवाते तो मंगवाते क्या, हलवा तो ख़त्म हो गया था, सबको बांट दिया था तो कुछ बचा नहीं था। तो बाबा ने कहा अभी हलवा तो ख़त्म हो गया, और वो निकल रहे थे बाबा से छुट्टी ले रहे थे। तो बाबा ने मम्मा को बुलाया, मम्मा आज जो हलवा बना था ना वो भी बना लो, हलवा बना लो और इस बच्चे को देना है, वो डब्बे में देना है। तो मोहिनी बहन कहती है मैं भी बैठी थी वहाँ, तो मैंने कहा बाबा ऐसे कैसे होगा, अभी तो निकल रहे हैं और बस पकड़नी है उनको, तो बस चली जाएगी, हलवा कब बनेगा? तो मम्मा ने कहा बिल्कुल नहीं कहो ऐसे, बाबा ने कहा है माना और हो ही जाएगा। और वो तो पार्टी चली, बाबा को कहा बाबा कोई बात नहीं, ये बच्चा तो ऐसे ही रोता है, उसको तो ये चाहिए वो चाहिए, बाबा ऐसी कोई बात नहीं। बाबा ने कहा नहीं, इस बच्चे की इच्छा है तो बाबा दिलाएगा। और इसलिए मम्मा को बोला, और किसको बुलाते तो 10 बातें करती, बाबा कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, हाँ कई बातें सुनाते, पर मम्मा को बुलाया। मम्मा ने कहा जी बाबा। और सचमुच वो पार्टी तो चली गई। उस समय क्या वो बसे बसे गाड़ियां, कार तो होती नहीं थी, पैदल जाते थे, पैदल जाते थे या पीछे के रास्ते से, और बैलगाड़ी में सामान होता था, तो बैलगाड़ी सामान लेकर के मेन रोड से जाती थी, और ये यहाँ से शॉर्टकट ये पीछे के रास्ते से पैदल जाते थे। तो ये तो पैदल ही गए, कोई टैक्सी वैक्सी थोड़ी थी। तो फिर बस स्टैंड पहुँचे, और उसी बीच में मम्मा ने वो हलवा भी बनवाया और किसी भाई को कहा कि आप बस स्टैंड पर पहुंचा के आओ। और वो बस में बैठे थे, ड्रामानुसार अभी बस छूटी नहीं थी, और सीधा जाकर के उसको हाथ में दिया। तो देखो बाबा ने कहा है ना तो हो जाएगा, एवर रेडी, कभी भी बहाने बाबा ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है कौन जाएगा, सब हो जाता है, सिर्फ अंदर की इच्छा शक्ति चाहिए। तो इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज है, जिसके आधार से हम एवर रेडी रह सकते, अंदर की इच्छा शक्ति। तो बाबा हम बच्चों को यही शक्ति देते हैं कि संकल्प हमारे इतने पावरफुल हो, लाइट भी हो और माइट भी हो। एक तो बाबा ने कहा है, ये बुद्धि से कभी भूले नहीं हम, और इससे हमको प्राप्ति क्या होगी, कितनों की दुआएं मिलेगी, तो दुआएं मिलेगी ये हमें पता है, तो वो दुआएं तो बहुत काम करती है। अंत में बाकी और कुछ काम नहीं करेगा, केवल बाबा की दुआएं काम करेगी, दवा भी कितना काम करेगी अंत में, अंत में दवा भी काम नहीं करती है, पर दुआ जरूर काम करती है। और मक्खन से बाल, आत्मा सहज निकल जाए, मक्खन से बाल, है ना, मक्खन से बाल क्यों कहते हैं, रोटी में अगर बाल पड़ा हो तो टुकड़ा टुकड़ा होके निकलता है, रोटी के टुकड़े टुकड़े तो बाल उसमें अटका हुआ होता है, पर मक्खन से बाल निकालो तो हाँ वो तो कितना सहज निकल आएगा। तो आत्मा तो अशरीरी जैसे है ही है, अभ्यास है उसका अशरीरी होने का, तो इसलिए जब आत्मा को निकलना एक सेकंड में उड़ गए। इसलिए देखो आपकी बट्टी का शीर्षक भी है डबल लाइट योग तपस्या, डबल लाइट स्थिति चाहिए। और ये डबल लाइट स्थिति कैसे आएगी, अशरीरी स्थिति से, एक तो एक सेकंड में आत्मा न्यारी बन जाए। तो आप और भी अनुभव करेंगे ये 2 दिन, और विशेष रूप से अपने अंदर शक्ति भरेंगे, ताकि यहाँ से आप जाएं बिल्कुल डबल लाइट होकर जाएं, सब बोझ बाबा को दे दें। आज शाम को डॉक्टर सचिन भी आपके आपका क्लास कराएगा, उनका भी बड़ा पावरफुल क्लास होता है। रामानुसार वो पूना गए हुए थे और कल ही वापस आए, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं कराऊंगा। और भी सब महारथी आपका क्लास कराएंगे, ठीक है, सब खुश हैं, सभी खुश हैं एकदम, बहुत अच्छा। तो अचानक, एवर रेडी और बहुत समय का अभ्यास, जैसे टाइम मिले न्यारे प्यारे हो जाओ, किसी को कुछ देखने की जरूरत नहीं, वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है। तो जब हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, मुझे भी अपना पार्ट मिला हुआ है, तो मुझे क्या पार्ट बजाना है, जो मेरा पार्ट है मुझे अपना पार्ट बजा करके आगे बढ़ना है। एक मिसाल देते ना भाई, एक्टर्स हैं, हर एक को अपना अपना रोल बजाने मंच पर आना है, तो जब उसको अपनी एक्टिंग याद करनी, अपना वो डायलॉग याद करना है, तो वो दूसरे के डायलॉग को याद करेगा क्या? उसको क्या करना है? अपना ही डायलॉग याद करना है ना, उसको क्या याद करना, उसको क्या याद करना, उसको क्या याद करना, ये थोड़ी सोचेगा, उसने अपना डायलॉग तो भूल जाएगा उसको अपना डायलॉग याद करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे क्या करना है बस वो सोचो, बाकी हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो यहाँ से इतना दृढ़ संकल्प करके जाना जो बिल्कुल परिवर्तित होकर के जाए। इसलिए बड़े भाग्यशाली हो जो पांडव भवन में आपको बट्टी करने का चांस मिला। ठीक है, चलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। हम अपनी आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे कि हमको कितने सुंदर साधारण शब्दों के अंदर बहुत सारी ऊंची ऊंची नॉलेज दी। और आज जो हमने पाठ दीदी से सीखा कि न्यारे बनके प्यारा बनना, तो उसको जिसको भी प्यार मिलेगा तो उसके पास भी वो प्यार सदा के लिए रहेगा, और हम भी उसके साथ जो ऊपर नीचे कभी हो जाता है वो कभी हमें भी महसूस नहीं होगा। तो हम न्यारे बन करके सबके साथ प्यारे बने, और ये प्यार करना हमको बहुत इजी हो जाएगा, है ना। कितना सरल तरीका दीदी ने सिखाया कि आत्मा को देख के हम प्यार करेंगे तो हमारा प्यार हर आत्मा के साथ अमर हो जाएगा। तो ऐसे हम आदरणीय दीदी जी का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि बहुत सुंदर क्लास हमें कराई और इतना समय हमें दिया हम सभी को, क्योंकि दादियां तो अभी हमारे बीच में है नहीं, पर दीदियों ने बहुत पालना, दीदी ने दादियों की ली है, बाबा मम्मा की भी ली है, तो फिर अपने व्यवहार से, अपने बोल से और बाबा के जो आशीर्वाद दीदी को मिले हैं उनके आधार से अपने मीठी वाणी के द्वारा हमें बहुत धन्य धन्य किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शाम को सभी समय पर आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे बीच में से संगीता बहन कई बार गए हैं, वो शाम को फिर आएंगे। ओम शांति।
ठहरे हैं हम जहाँ में इसमें तू ही तो बसता, तुम बिना